एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने, आप कह सकती हैं, 60 साल पहले अमेरिकी समाज को आईना दिखाया था। और
बिल्कुल
कमाल की बात यह है कि उसकी बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। किताब है जॉन केनेथ गालब्रेथ की द एफ्लुएंट सोसाइटी, यानी एक समृद्ध समाज।
बिल्कुल, 1958 में आई थी ये किताब। और ये सवाल पूछती है कि जब कोई देश अमीर हो जाता है तो क्या उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, या फिर नई तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं।
हाँ,
गालब्रेथ ने उस वक्त एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास देखा था अमेरिका में। लोग निजी तौर पर तो अमीर हो रहे थे, उनके पास बढ़िया कारें थीं, बड़े घर, ये सब।
हाँ,
लेकिन जो चीजें सबकी थीं, जैसे सड़कें, स्कूल, पार्क, यहां तक कि हवा,
हाँ,
उनकी हालत खराब हो रही थी।
अच्छा,
इसी को उन्होंने कहा प्राइवेट ऑप्यूलेंस एंड पब्लिक स्क्वालर,
यानी निजी शानो शौकत और सार्वजनिक कंगाली।
हाँ बिल्कुल।
और यही सवाल मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है, शायद भारत जैसे देशों के लिए तो और भी ज्यादा, जहां हम एक तरफ बढ़ती अमीरी देखते हैं और दूसरी तरफ सार्वजनिक सुविधाओं की कमी महसूस होती है।
सही कहा।
तो आज हम गालब्रेथ के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये असंतुलन क्यों पैदा होता है, और क्या एक अमीर समाज का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना ही होना चाहिए।
हाँ, और इस सोच के पीछे जो शख्स थे, जॉन केनेथ गालब्रेथ, वो भी काफी दिलचस्प इंसान थे। मतलब वो सिर्फ एक कमरे में बंद रहने वाले अकादमिक अर्थशास्त्री नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, हार्वर्ड में प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन साथ ही कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कीमतें कंट्रोल करने का जिम्मा संभाला उन्होंने, और वो भारत में अमेरिका के राजदूत भी रहे।
अरे वाह,
यानी उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ जमीनी हकीकत का भी पूरा अंदाजा था। बिल्कुल, और यही बात उनके काम को खास बनाती है। वो इंस्टीट्यूशनल अर्थशास्त्री कहलाते थे।
इंस्टीट्यूशनल अर्थशास्त्री, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब वो सिर्फ मांग और आपूर्ति के गणितीय मॉडल नहीं देखते थे। वो ये समझते थे कि असली दुनिया में बड़ी कंपनियां, सरकारें और यूनियनें कैसे अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत से मोड़ती हैं।
अच्छा, यानी संस्थाओं का रोल।
हाँ, वो मानते थे कि इन संस्थाओं के खेल को समझे बिना अर्थव्यवस्था को समझना अधूरा है। और उनकी एक और खासियत थी, वो मुश्किल आर्थिक विचारों को आम लोगों की भाषा में बड़े दिलचस्प अंदाज में समझाते थे।
हाँ, मैंने सुना है।
उन्होंने एक शब्द गढ़ा था, कन्वेंशनल विजडम।
कन्वेंशनल विजडम यानी रूढ़िवादी ज्ञान।
हाँ, रूढ़िवादी ज्ञान। ये वो बातें होती हैं जिन्हें सब मान लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा से चली आ रही हैं, भले ही वो आज के समय में सही हो या ना हो।
अच्छा,
गालब्रेथ इसी कन्वेंशनल विजडम पे सवाल उठाने से कभी नहीं डरे।
तो दी एफ्लुएंट सोसाइटी किताब इसी कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देती है। किताब कहती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश वो इतने अमीर हो गए थे जितने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे।
हाँ, एक अभूतपूर्व समृद्धि का दौर था।
बिल्कुल, सदियों पुरानी अभाव की समस्या यानी जरूरत की चीजों की कमी वो काफी हद तक दूर हो गई थी। लोगों के पास खाने को था, पहनने को था, रहने को था।
लेकिन यही गालब्रेथ एक पेंच देखते हैं। वो कहते हैं कि समाज तो अमीर हो गया, पर उसकी सोच वो पुरानी गरीबी के दौर वाली ही रह गई।
अच्छा, कैसे?
उस पुरानी सोच का मूल मंत्र था, ज्यादा उत्पादन करो, ज्यादा बनाओ, क्योंकि जब कमी थी तब यही सबसे जरूरी था। एडम स्मिथ से लेकर मार्क्स तक, अब देखें तो सबने उत्पादन पर ही जोर दिया था।
हाँ, ये तो है।
पर गालब्रेथ ने पूछा, अब जब हम जरूरत से ज्यादा बना सकते हैं, तब भी क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाते जाना ही लक्ष्य होना चाहिए? क्या इससे वाकई लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, या फिर हम बस ऐसी चीजें बनाए जा रहे हैं जिनके हमें शायद जरूरत भी नहीं?
और इस चक्कर में उन चीजों को नजरअंदाज करें जो सच में जरूरी हैं, जैसे अच्छी शिक्षा, साफ हवा, बेहतर शहर।
बिल्कुल, यहीं से गालब्रेथ अपनी सबसे मशहूर और थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद बात कहते हैं, निर्भरता प्रवाह या डिपेंडेंस इफेक्ट।
निर्भरता प्रभाव, ये क्या है?
उनका कहना था कि अमीर समाजों में लोगों की बहुत सारी इच्छाएं असली या अंदरूनी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें सचमुच उन चीजों की जरूरत है।
मतलब जरूरतें तो जरूरतें होती हैं, वो बनाई थोड़ी जाती हैं।
गालब्रेथ का तर्क थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि उत्पादन का पूरा सिस्टम, खासकर विज्ञापन और मार्केटिंग, वो मिलकर लोगों के मन में नई नई इच्छाएं पैदा करता है।
अच्छा,
कंपनियां पहले चीजें बनाती हैं, फिर हमें यकीन दिलाती हैं कि हमें उनकी जरूरत है। उन्होंने लिखा भी है, जैसे जैसे समाज अधिकाधिक समृद्ध होता जाता है, इच्छाएं अधिकाधिक उसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं जिससे वे संतुष्ट होती हैं। इस प्रकार इच्छाएं उत्पादन पर निर्भर हो जाती हैं। वही निजी संपन्नता और सार्वजनिक कंगाली। लोग अपनी कमाई शानदार कारों, गैजेट्स, छुट्टियों पर खर्च करते हैं क्योंकि विज्ञापन उन्हें यही करने को उकसाता है। लेकिन जब बात आती है टैक्स देने की, ताकि स्कूल सुधर सकें, सड़कें बन सकें, पार्क साफ रह सकें,
हाँ।
तो सबको लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है, सरकार का खर्चा मतलब बोझ।
गैलब्रेथ ने इसका बड़ा सटीक चित्र खींचा था। वो कार वाला उदाहरण तो कमाल का है।
हाँ हाँ बिल्कुल।
उन्होंने लिखा था, वह परिवार जो अपनी एयर कंडीशन्ड पावर स्टीयरिंग कार लेकर घूमने निकलता है, वो ऐसे शहरों से गुजरता है जो बुरी तरह से पक्की सड़कों वाले हैं, कूड़े कचरे जीर्ण शीर्ण इमारतों से बदसूरत बने हुए हैं। वे प्रदूषित नदी के किनारे शानदार पैक्ड खाना खाते हैं और शायद रात को सोने से पहले सोचते होंगे कि उनकी खुशियों में ये अजीब असमानता क्यों है।
ये तस्वीर आज भी कितनी जानी पहचानी लगती है ना?
बहुत ज्यादा।
सार्वजनिक खर्च बुरा या अनावश्यक?
सही का।
गैलब्रेथ कहते हैं कि ये हमारी सोच का दिवालियापन है। एक अमीर समाज को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी, उसे सामाजिक संतुलन, सोशल बैलेंस साधना होगा।
तो ये सामाजिक संतुलन, ये कैसे आएगा? क्या सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले ले?
नहीं नहीं, गैलब्रेथ ऐसा नहीं कह रहे थे। उनका कहना था कि हमें जानबूझकर, सोच समझकर संसाधनों का रुख वो निजी उपभोग से हटाकर सार्वजनिक निवेश की ओर मोड़ना होगा।
अच्छा।
हमें मानना होगा कि अच्छे स्कूल और अस्पताल भी उतने ही जरूरी हैं जितनी अच्छी कारें। इसके लिए मजबूत सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इन सब में निवेश बढ़ाना होगा।
और फंड कहाँ से आएगा?
उन्होंने तो ये भी सुझाया कि अमीर समाजों में सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर लगाना एक अच्छा तरीका हो सकता है सार्वजनिक सेवाओं को फंड करने का।
सेल्स टैक्स, वो क्यों?
क्योंकि जो ज्यादा खर्च करेगा वो ज्यादा टैक्स देगा, तो ये एक तरह से फेयर भी है।
अच्छा, ये बात तो है। और उन्होंने बेरोजगारी भत्ते को मजबूत करने की भी बात की थी, है ना?
हाँ बिल्कुल। उनका तर्क था कि अगर लोगों को नौकरी जाने का डर कम होगा तो समाज पर लगातार ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का दबाव भी कम होगा। तब हम ज्यादा शांति से सोच पाएंगे कि कौन सा उत्पादन वाकई जरूरी है और कौन सा सिर्फ विज्ञापन के जोर पर चल रहा है।
ये भी दिलचस्प पॉइंट है।
एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही थी, एक नए वर्ग, न्यू क्लास के उभरने की।
नए वर्ग, कौन लोग थे ये?
ये वो लोग थे, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार, इंजीनियर, जिन्हें सिर्फ पैसा कमाने या चीजें जमा करने से ज्यादा अपने काम की गुणवत्ता, समाज और ज्ञान विज्ञान में रुचि थी।
अच्छा।
गैलब्रेथ को उम्मीद थी कि ये नया वर्ग सामाजिक संतुलन की मांग को मजबूती देगा।
तो अगर हम गैलब्रेथ की बातों का सार निकालें इस पूरी बातचीत का, तो कुछ मुख्य चीजें उभर कर आती हैं। पहली तो यही कि पुरानी अभाव के दौर की आर्थिक सोच अमीर समाज पर लागू नहीं होते, है ना? हमें उत्पादन के जुनून से आगे बढ़कर सोचना होगा।
बिल्कुल।
दूसरी कि हमारी बहुत सी इच्छाएं असली नहीं बल्कि विज्ञापन और बाजार द्वारा बनाई गई हैं। निर्भरता प्रभाव, ये जानना हमें एक ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बना सकता है।
हाँ, हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है?
सही।
तीसरी, वो चुभने वाली सच्चाई, निजी संपन्नता के साथ साथ सार्वजनिक कंगाली का बढ़ना, ये आज भी हमारे शहरों में, हमारे समाज में साफ दिखता है। चमचमाती गाड़ियां और टूटी सड़कें, आलीशान मॉल्स और बदहाल सरकारी स्कूल।
हाँ, ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है।
चौथी बात, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को तरक्की का पैमाना मानना काफी नहीं है।
बिल्कुल।
हमें ये भी देखना होगा कि उस ग्रोथ से बन क्या रहा है और उसका समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। क्या हम टिकाऊ विकास कर रहे हैं?
और पांचवी, सामाजिक संतुलन की जरूरत। एक अच्छे समाज के लिए निजी आराम और सामूहिक भलाई के बीच संतुलन साधना जरूरी है।
हाँ, बाजार ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए सोच समझकर सार्वजनिक नीतियों की जरूरत है।
गैलब्रेथ की भाषा भी बड़ी जोरदार थी। जैसे वो कन्वेंशनल विजडम पे उन्होंने कहा था, क्या था वो?
हाँ, उन्होंने कहा था, रूढ़िवादी ज्ञान स्वयं को उस दुनिया के अनुकूल नहीं बनाता जिसकी उसे व्याख्या करनी है, बल्कि उस दर्शक वर्ग के अनुकूल बनाता है जिसके विश्व दृष्टिकोण को उसे बनाए रखना है।
मतलब पुरानी सोच इसलिए नहीं टिकी रहती कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि वो सुनने वालों को अच्छी लगती है, उनकी बनी बनाई सोच को बदलती नहीं।
एग्जैक्टली।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि जो बातें सब मानते हैं उन पर भी सवाल उठाना जरूरी है। हो सकता है वो आज के जमाने में बेमतलब हो गई हों।
अब सवाल उठता है कि इन सब बातों का हमारी आज की जिंदगी में क्या मतलब है? हम रोजमर्रा में इन विचारों का क्या कर सकते हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। व्यक्तिगत स्तर पर तो मुझे लगता है यही कि हम अपनी खरीदारी की आदतों पर थोड़ा सोचें।
कैसे?
मतलब हर नई चीज के पीछे भागने से पहले रुक कर पूछें कि क्या ये वाकई मेरी जरूरत है या सिर्फ एक बनाई गई इच्छा। शायद इससे हम कुछ पैसे बचा पाएं और यू नो गैर जरूरी चीजों का अंबार लगाने से बचें।
सही बात। और नागरिक के तौर पर?
नागरिक के तौर पर हम सिर्फ टैक्स कम करने या GDP बढ़ाने की बातों से आगे देख सकते हैं। हम अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से पूछ सकते हैं कि भाई शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर कितना खर्च हो रहा है, क्या हमारे शहर रहने लायक बन रहे हैं।
हाँ, और हम टैक्स को बोझ समझने की बजाय एक निवेश की तरह देख सकते हैं, एक बेहतर समाज में निवेश।
बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, कंपनियों से भी पूछा जा सकता है। क्या वो सच में लोगों की जरूरतें पूरी कर रही हैं या सिर्फ नई जरूरतें पैदा करके मुनाफा कमा रही हैं?
उनकी जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर के प्रति है या समाज के प्रति भी, ये एक बड़ा सवाल है।
हाँ, और बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमें सोचने को कहता है कि क्या देश की तरक्की नापने के लिए GDP के अलावा और बेहतर पैमाने नहीं होने चाहिए,
जैसे मानव विकास सूचकांक HDI।
हाँ।
या भूटान का वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स।
हाँ, ये सारी बातें दिखाती हैं कि गालब्रेथ के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, खासकर पर्यावरण संकट और बढ़ती असमानता के इस दौर में।
बिल्कुल।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपनी सोच को समय के साथ बदलना सीखना होगा। जो कल सच था जरूरी नहीं कि वो आज भी उतना ही सच हो।
हाँ।
खासकर जब समाज अमीर हो जाए तो उसके लक्ष्य सिर्फ और ज्यादा अमीर होना नहीं बल्कि बेहतर होना होना चाहिए, और बेहतर का मतलब सिर्फ ज्यादा समान नहीं होता।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि असली समृद्धि संतुलन है, निजी और सार्वजनिक जरूरतों के बीच संतुलन। बाजार अपनी जगह जरूरी है लेकिन वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता।
सही कहा।
अच्छी सड़कें, साफ हवा, बेहतरीन शिक्षा जैसी चीजें बाजार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इनके लिए हमें मिलकर समाज के तौर पर सोचना और काम करना होगा। समृद्धि हमें ये करने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों देती है।
सही कहा। गालब्रेथ हमें एक तरह से चेतावनी देते हैं कि अमीरी का मतलब अगर सिर्फ ज्यादा उपभोग है तो हम एक अंतहीन दौड़ में फंस सकते हैं जो शायद हमें कहीं ना ले जाए।
और शायद श्रोताओं के लिए आज यही सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारी आज की भागदौड़, हमारी तथाकथित समृद्धि सच में हमें एक बेहतर, ज्यादा संतुष्ट जीवन दे रही है
या सिर्फ और ज्यादा चीजों के पीछे दौड़ा रही है जबकि असली जरूरी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।